बाबा की ओनेस्टी तो अलग ही है। दुनिया में तो ओनेस्ट लोग दिखने बंद हो गए होंगे या मिलते हैं? नहीं, दुनिया में कलयुगी दुनिया में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मान्यता थी, आजकल बदल दी गई, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थोड़ी मान्यताएं बदलती आती हैं कलयुग के अंत में। इसलिए बाबा हमारी इस ऑनेस्टी माने ईमानदारी की नई परिभाषा देते हैं, बाबा से ईमानदार होना और वफादार होना। ईमानदार शब्द में ईमान भी है, धर्म। धर्म का यथार्थ मार्ग यही है जिसमें हम ईश्वरीय आज्ञाओं पर पूरी तरह चल रहे हों। देखिए, बाबा ने हमारे कल्याण के लिए हमें कदम कदम की राय दी। क्या सोचो क्या न सोचो, कैसे बोलो क्या न बोलो, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत दी हैं। श्रीमत कोई बंधन नहीं है, श्रीमत कोई भारी चीज नहीं है। लोग सोचते हैं श्रीमत पे चलना पड़ेगा, कोई भारी काम ये नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात कभी कही, पहली श्रीमत है मन मना भव। अगर आप इस पहली श्रीमत पर चलते हो तो अनेक श्रीमत इसमें आ जाती हैं, समा जाती हैं। बहुत अच्छी ये बात थी। मुझे याद है बहुत साल पहले हमारा हिस्ट्री हॉल ही था मधुबन में, छोटा हॉल केवल। तो अव्यक्त बाप दादा आए और भाइयों की भट्टी थी। उन दिनों भट्टी माना 70-80 लोग आएंगे, बस इससे ज्यादा तो नहीं होता था। तो बाबा ने हाथ उठवाया, घरेलू मीटिंग होती थी बाबा से, आज जैसी नहीं, बिल्कुल घरेलू, जैसे क्लास में भगवान आ गए, अपने परिवार में आ गए और बातचीत रूढ़िहान कर रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, श्रीमत पर कौन कौन पूरा चलते हैं? सबने हाथ उठा दिया, चलते हैं। तब बाबा ने कहा, हम तो छोटे थे, तो बाबा ने कहा, पहली श्रीमत है निरंतर मुझे याद करो। अब बताओ इस श्रीमत पे कौन चलते हैं पूरा? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर कहा 75% चलते हैं, उसमें भी नहीं उठाया। बाबा परसेंटेज डाउन करते गए। तो श्रीमत जो हमारे मन को बदल दे, जो हमारे विचारों को बदल दे, हमारे विचारों को महान बना दे, हमारी पुरानी चाल को समाप्त करके नई चाल में बदल दे, वो श्रीमत है। स्वयं भगवान ने मत दी है। बाबा कहा करते थे, तुम लोग गुरुओं की मत पर भी चलते आए, देखा, भक्ति की मत पे भी चलते आए, शास्त्र मत पे भी चलते आए और मनुष्यों की मत पर भी, और उतरते ही आए तो कुछ गड़बड़ तो रही होगी ना। जाना हो ऊपर की ओर और फिसल रहे हो नीचे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो रही। बाबा स्पष्ट समझाते थे, देखो जो नए बैठे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बात है, किसी को भी ये पता नहीं चला कि परमात्मा का स्वरूप कहाँ क्या है और उसका धाम कहाँ है, ये बहुत बड़ी मिसिंग हो गई थी, बहुत बड़ी चीज छूट गई। जब कुछ समझ में नहीं आया तो कह दिया सब जगह तू ही तू है, छोड़ो झंझट, यहाँ है या वहां है, तेरे में है या मेरे में, सब में है, गंदगी में भी है तो पत्थरों में भी है, हम पूछा करते थे उन दिनों, इस पे बहस बहुत चलती थी कि पत्थर में रह के भगवान क्या करता है भाई, क्या जरूरत पड़ गई उसको गंदगी में भी रहने की। गलत कंसेप्शंस दे दिए संसार को, गिरते आए। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने आके शुरू कर दी, आप सब उसके अनुभवी हैं। रोज सवेरे बाबा की मुरली सुनना, क्या होता है इससे? इसको कोई साधारण बात न समझे। मुरली के समय हमारा भगवान से मिलन होता है, रोज विचार बदलते हैं, रोज खुराक मिलती है। किसी भी संन्यास आश्रम में ये प्रथा नहीं है कि रोज कुछ अच्छी बात सुनाई जाए। गीता पाठ भी लोग करते हैं लेकिन कभी भी करते हैं, सवेरे करें, उससे आत्मा में बल भर जाए रोज, होता है या नहीं? रोज जागृति हो जाए। बाबा के महावाक्य माना, रोज हमें जगाते हैं, बहुत बड़ी चीज हो गई। तो श्रीमत मिल गई, रोज क्लास करो, मुरली सुनो। उससे पहली श्रीमत मिल गई रोज अमृत वेले की, सब जानते हैं वो सुख परम सुख है। जो उससे वंचित रहते हैं उन्हें तो उस सुख का कोई आभास ही नहीं है। यहां तो आप सब बहुत आते हैं, सुख मिलता है या नहीं सवेरे? किस किस को मिलता है जरा हाथ उठाना, सबको मिलता है। बाबा से बात कर लें। सवेरे के बारे में दो चीज आपको कह दूं, श्रीमत है, ये सब श्रीमत के अंतर्गत आ रहा है। सवेरे उठकर स्वमानों की माला स्मरण करो, बहुत ध्यान देंगे सभी, सवेरे उठते ही पहले मिनट में मन इधर उधर न चला जाए। अगर आपने पहले मिनट अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में ले लिया तो लंबा समय आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। इसके अनुभव करने सबको। उठते ही स्वमान याद करना प्रारंभ कर दें। दूसरे शब्दों में कहा बाबा, ये सब बातें अभी 3-4 मास में आ चुकी हैं मुरली में, अव्यक्त में। सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। स्वमान हमारा श्रृंगार है, इस श्रृंगार से सज धज कर बाबा के पास चले। तो उठते ही 10-15 स्वमान लगातार याद कर जाओ ताकि मन पर वो छा जाए, बाकी संकल्प लोप हो जाए। इसका जितना आप अच्छा अभ्यास करेंगे अमृत वेले प्रभु मिलन का बहुत सुख मिल जाएगा। अटेंशन दें, 3 मिनट केवल, पहले 3 मिनट अपने को अच्छे संकल्पों से चार्ज कर दो। 3 मिनट, 5 मिनट अच्छे संकल्पों से चार्ज कर दो। देखो जीवन कैसा होता है, सवेरे का समय पूरे दिन को अफेक्ट करेगा, वो दिन अगले दिन को प्रभाव डालेगा। रोज सवेरे अगर ऐसा करने लगे तो 1-2 मास में जीवन तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा। जिनका क्रोध नहीं जाता वो जाएगा, जिनके संस्कार नहीं बदलते सहज बदल जाएंगे, आप ही बदल जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह स्वमानों से शुरू करेंगे अमृत वेले को। और दूसरी चीज वो बाबा ने कही है, सवेरे ही जो प्राप्तियां तुम्हें बाप से हुई हैं उन्हें याद करो और संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिसे आंख खुलते ही भगवान मिलता है। आंख खुली और वो बुला रहा है, आओ मेरे पास, जो चाहे मुझसे ले लो। शुक्रिया करें उसका। प्राप्तियों की आप लिस्ट बना सकते हैं, कम से कम 16, वो पहले होमवर्क कर लेना है, यहीं कर लो। बहुत बातें सुनने से आपको समझ में आता रहेगा मुझे बाबा से क्या क्या मिला, उसको लिखो। सभी गॉडली स्टूडेंट लिखने और पढ़ने पर जरूर ध्यान दें, लिखना भी है पढ़ना भी है, स्टूडेंट लाइफ हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं सारा दिन मुरली पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके दो चार पॉइंट सारा दिन याद रख लो, वो काफी हो जाएगा। ध्यान देंगे इस बात पर बहुत ज्यादा, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, इसलिए रोज की मुरली से कम कोई एक पावरफुल संकल्प अपने ख्यालों के लिए रख लो। आज की मुरली बहुत सुंदर थी, ऑनेस्टी, श्रीमत और कई चीजें बाबा ने महावाक्यों में बताई, मैंपन का त्याग, मैं और मेरे का त्याग। एक दो बात याद रखो, उसे याद करेंगे दिन में 5-7 बार एक ही बात, तो उससे ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी। याद रखेंगे, नोट कर लेना जो नोट कर रहे हैं, ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत पावर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मेरे संकल्पों में बहुत शक्ति है। बहुत सारे काम संकल्पों की शक्ति से करने की प्रैक्टिस करें सभी। संकल्प चेंज करो, जीवन चेंज हो जाएगा। संकल्पों में बहुत ताकत है। हमारे संकल्प आत्मा जो यहां बैठ के उठा रही है, उसकी एनर्जी पूरे ब्रेन को जाती है, बाहर फैलती है। अच्छे संकल्प करेंगे, ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज करेगा। इसलिए आप सभी जो बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, ध्यान देंगे, स्वमान के संकल्प सबसे श्रेष्ठ संकल्प हैं। उस संकल्प की एनर्जी ब्रेन को बहुत पावरफुल बनाएगी, आपको ब्रेन की तकलीफें ही नहीं होंगी, मानसिक रोग ही नहीं होंगे जीवन भर, क्योंकि मानसिक रोगों का प्रकोप संसार में बढ़ता जा रहा है। 2025 तक लगता है संसार की बहुत बड़ी पॉपुलेशन मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगी, बढ़ता जा रहा है। पावरफुल संकल्प स्वमान के करो। माताओं को मैं कुछ संकल्प दिया करता हूं, आप लोग सुनते होंगे, आज से पक्का कर दो, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। भाई लोग भी ले लें, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं। कोई ज्ञान में है या नहीं है इसको नहीं सोचना, मैं इस घर में महान आत्मा, घर की बहुत बड़ी शक्ति हूं मैं। एक शक्तिशाली आत्मा घर में हो बहुत काफी है। दूसरा संकल्प बहनों माताओं के लिए, जो भी इसका सुख लेना चाहे, मैं पवित्रता की देवी हूं। आपके ब्रेन को प्योर वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे, जैसे खुराक मिलेगी लगातार। जितनी बार आप संकल्प करेंगे, एक बार में 5 बार कर जाना, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, 5 बार। देखो टॉनिक जाएगा आपके ब्रेन को, और ब्रेन ठीक तो सारी बीमारियां ठीक। ब्रेन सारे शरीर को कंट्रोल करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीमारियों पर इस एक संकल्प के प्रयोग से विजय पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। भाई लोग भी ले लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बहुत इफेक्टिव है ये संकल्प, ये सबसे श्रेष्ठ संकल्प है संसार में। इनसे महान संकल्प दुनिया में कोई जानता ही नहीं, स्वमान कोई तो नहीं जानते, किसी शास्त्र में वेदों में इसकी चर्चा बिल्कुल मिस हो गई है। हम सभी इसके सुंदर सुंदर अनुभव करें। तो बाबा की पहली दो श्रीमत हम सबको पालन करनी है, सवेरे योग और मुरली। जो मुरली में ढीले हैं वो जरा चुस्त हो जाएं। मुरली में आना माना, आपको ये बात बिल्कुल नहीं लगेगी, बाबा की नजर हम पे आना। उसकी नजरों में आ जाएंगे, उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, उसकी सुरक्षा में, उसकी छत्र छाया में आ जाएंगे। बहुत सुंदर ये बात है। मैं आपको एक स्वमान और याद दिला दूं, सबको अपने स्वमान को बहुत जगाना है। बाबा का प्रसिद्ध स्वमान है और इस पर बहुत आत्माओं ने काम किया है। बाबा के मैं दूसरे शब्द याद दिला रहा हूं, संकल्प वही है, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, लेकिन बाबा के दूसरे शब्द हैं। साकार मुरली में आ गए हैं, जो ध्यान से सुनते हैं उनको याद आ जाएगा। उन संकल्पों की हमेशा प्रैक्टिस रखनी चाहिए। तुम इस धरती के चेतन सितारे हो, नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। नक्षत्र माना ग्रह, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। हम अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं, बाबा रोज जगाता है हमें और हमारी शक्तियों को। जगाएं आप भी, वो सो जाती हैं रोज रोज रोज, उन्हें जगाना है, कई बार जगाना है तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा की एक बहुत अच्छी नशे की शक्तिशाली बात आपको सुना देता हूं। बाबा ने कभी कहा था, कोई बाबा के ऐसे बच्चे सामने आए थे जिनके सामने परिस्थितियां बहुत थी, परीक्षाएं बहुत थी, लोग बहुत उल्टा सुल्टा बोलते थे। तब बाबा ने ये कहा उन्हें देखकर, एक तरफ संसार की अक्षौणी सेनाएं हों और दूसरी तरफ तुम अकेले, जीत तुम्हारी होगी क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। जगाएं सभी अपने स्वमान को, हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी श्रीमत है बाबा की, हम अकेले नहीं हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बना है। इसको कहीं लिख लो अपने घर में और दिन में दो चार पांच बार ये याद आ जाए। ये एक नशा है, भगवान हमारा साथी है, हम अकेले हैं इन्हें। ये याद आते ही हमारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी और परिस्थितियां और समस्याएं लोप हो जाएंगी। आप इसके अनुभव करें जीवन में। अनुभव की एक बात और सुना देता हूं, करते होंगे आप और ज्यादा करना, और वो है, मैं वो महावाक्य सुना देता हूं पूरा। जब भी परिस्थिति आए प्यार से कहना, करो याद, माताओं को तो याद होगा, भाई लोग बताओ, मेरे बाबा मीठे बाबा, आगे तो बोलो, नहीं प्यारे बाबा नहीं आ जाओ मदद करो तो बाबा भी, यही तो बात है असली, बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। जिसको भगवान मदद करने का वायदा कर रहा हो, वो उसकी मदद न लेकर अकेले युद्ध के मैदान में विचरण करें, बिना बंदूकों के कोई सैनिक युद्ध के मैदान में चला जाए, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो, क्या हो जाएगा, गया काम से। तो बाबा हमारे साथ है इस माया के युद्ध में, परिस्थितियों के युद्ध में, लाइफ एक चैलेंज बन गया है, इस चैलेंज में वो स्वयं हमारे साथ, ये केवल याद रखना है और बुला लो, आ जाओ मदद करो, इसके रोज अनुभव करना अपने जीवन में बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा मजा आएगा जीवन की यात्रा में। तो श्रीमत, श्रीमत तो सो हो सकती हैं, पर आप 5-7 की लिस्ट बना लेना, क्योंकि ज्यादा बनाएंगे तो भारी हो जाएंगे, इतना करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं है, बोल हमारे कैसे हों, हम क्रोध से मुक्त रहें, वही बात जो हम रोज क्लासेस में सुनते हैं वो श्रीमती तो है, हम जो आपको क्लास कराएंगे, सविता बहन ने जो पहले क्लास कराई वो सब श्रीमती तो हैं। बोल हमारे कैसे हों, क्रोध मुक्त जीवन बने, अभिमान छूटता चले, अमृत वेले अच्छा हो मुरली सुने, अच्छे हमारे स्वमान हो जाएं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, बस इतना ही करना है। साधनाओं में 5 स्वरूपों का अभ्यास, साधनाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी श्रीमत है, योग अभ्यास के लिए बहुत अच्छी अच्छी श्रीमत हैं, आत्मा होने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, आत्मा देखने का अभ्यास, बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास, अमृत वेले योग करने का, बाबा मेरे साथ है ये याद रहे, ये सब योग के पार्ट हैं। इनको आप लिख भी लेना और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो मन एकाग्र बहुत रहेगा। बहुत बड़ी साधना है हमारी, बाबा की ये महावाक्य मैं कई बार सुनाता हूं, मैंने ऐसे नोट किए हुए थे, मैं रोज पढ़ता था इसे, तुम्हारी बहुत बड़ी साधना है बुद्धि को स्थिर करने की। और आज तो ये सबसे बड़ी साधना हो गई, क्योंकि आज के संदर्भ में मनुष्य की बुद्धि मन बहुत भटक रहा है, अननेसेसरीली भटकता है, पता भी नहीं चलता क्यों भटक रहा है। मैं एक दो चीज आपको और कह दूं, समय तेजी से बदलेगा, ये ना सोचना कोरोना चला गया शांति हो गई, मुंह तो आपके अब भी बंद कर दिए गए, ऐसा ना सोचना कोरोना चला गया शांति हो गई, कोरोना तो सचमुच चला गया, वो है नहीं अभी, वो तो किसी को भी जुकाम हो जाए हॉस्पिटल में जाओगे पॉजिटिव, जुकाम हुआ माना पॉजिटिव, वो तो मेडिकल प्रोफेशन है ना, कॉमर्शियलाइज हो गया सब कुछ। लेकिन तेजी से जो कोरोना से ही शुरू हो गया है, तेजी से इस संसार में भय बढ़ता जाएगा, बहुत भय होगा, मानस भयभीत रहेंगे। तो दूसरा बड़ा पार्ट आ रहा है जल्दी, उसकी नींव पावरफुल पड़ती जा रही है भारत में, आप समझ गए होंगे, भय ही भय होगा, घर से बाहर निकलना ऐसा लगेगा पता नहीं वापिस आएंगे या नहीं, भय का इफेक्ट ब्रेन पर आएगा, मन की स्पीड फास्ट होती जा रही है, वर्तमान समय की सबसे भयानक समस्या है मन की स्पीड फास्ट होना, बहुत बड़ा रोग ये बनता जा रहा है, क्योंकि इससे ब्रेन की शक्तियां तेजी से नष्ट होती हैं, खेल बिगड़ जाता है जीवन का। 2-3 चीजें ध्यान देंगे, पहली सुंदर धारणा, एक ही शब्द है, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, जो कुछ इस धरा पर होगा उसे स्वीकार करने की आदत डालें। चिंतन करो, आपके परिवार में भी होगा, आपके साथ भी होगा, आपके शहर में भी होगा, और सारे भारत में और सारे संसार में, क्योंकि युग बदलेगा, ये दुनिया दिखाई नहीं देगी जो आज दिखाई दे रही सजी धजी दुनिया, कुछ और दिखाई देगा। ऐसे में बहुत मजबूत होने के लिए, चित्त को शांत रखने के लिए साक्षी भाव, जो कुछ हो रहा है बोलो, सोच लो आगे क्या बोलना, जो कुछ हो रहा है नहीं अच्छा अच्छा कहना तो भारी पड़ेगा, तब लोग आपको मारने आ जाएंगे, इधर विनाश हो गया तुम कह रहे अच्छा हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वही होना है, साक्षी भाव यही तो होना है। अब युग बदलेगा, नया मकान बनेगा तो पुराना तो जाएगा ही, उसमें कोई कहे नहीं हमारा पुराना भी रख दो नया भी, एक ही जगह पे दो थोड़ा ही होंगे। तो जो कुछ हो रहा है यही होना है, और सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं होंगे, तेज गति हो जाएगी। इसलिए चित्त को साक्षी और हल्का रखना होगा, हल्का निर्भयता। सवेरे उठ के आप याद करने लगो केवल 7 बार, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। 7 बार करेंगे भय आएगा नहीं, और आपको बहुत अच्छी आदत हो जाएगी। बाबा को बुलाने को भी अपनी आदत बना लेना है, बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी धारणा, हमें अपनी खुश रहने की आदत का विकास करना है। खुश रहना सहज काम नहीं है आज की दुनिया में, कोई कोई तो खुश रहते हैं बहुत। और खुशी के लिए आप ये काम करेंगे, ताकि आपकी खुशी एक आपकी पावर भी बन जाए, आपकी खुशी आपकी शक्ति बन जाए। मुरली सुनते हुए कहीं भी आप सुने, खुशी और नशे की पॉइंट नोट कर लो, रोज एक कर लो, ज्यादा नहीं, आती रहती है मुरलियों में, किस दिन आपको लगेगा नहीं भी आई छोड़ दो। खुश रहने की और नशे में रहने की पॉइंट कम से कम आपके पास 20-25 हो जाएं, उन्हें अलग लिख लेना, फिर उन्हें पढ़ लिया 3 मिनट में पढ़ लिया, तो कोई छोटी मोटी बात जो मन पे इफेक्ट डाल रही है, कोई छोटी सी बात जो मन को भारी कर रही है, कोई बिल्कुल मूल्यहीन बात जो आपकी खुशी छीन कर चली गई है, वापस आ जाएगी सब खुशी। बातें छोटी लगने लगेंगी, बातें बड़ी लगती हैं। ऐसा सबको प्लान बनाना है। देखो बाबा की मुरलियों में हम बहुत बार सुनते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो, भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गया है। ये छोटी बात थोड़ा ही है, जिसको तुमने जन्म जन्म याद किया वो तुम्हारे सम्मुख विराजमान है। साकार मुरलियों में बहुत आता था ये, तो ये हमारी खुशी और नशे की पॉइंट है। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूं, मैंने आकर तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दिया है, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। ऐसी 20-25 बातें आप नोट करो। अब ये स्टूडेंट लाइफ सभी को बनानी है बहुत अच्छी, ताकि हमारा मन हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बातों से भरपूर रहे। एक बात और अभ्यास की, सवेरे हम कराते हैं, कल भी कराई आज भी, कल तो बारिश ही बहुत थी, सुन भी नहीं रहा होगा आपको। अपने चारों ओर 2 बार केवल आभा मंडल बनाना है। आभा मंडल समझते हैं ना सभी, माताएं जानती हैं आभा मंडल क्या होता है, जो नहीं जानता हो हाथ उठाओ हम क्लियर कर देते हैं। हाँ उठाओ, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं, क्योंकि शब्द आम संसार में प्रचलित नहीं है। देखो आपने देवताओं के चित्रों के चारों ओर लाइट का घेरा देखा होगा, चित्रों में, इसको आभा मंडल कहते हैं, ओरा इंग्लिश में प्रभा मंडल। छोटी सी कहानी सुना देता हूं एक मिनट में। राम और रावण का युद्ध हो रहा है, रावण के सभी पुत्र मारे जा चुके हैं, मेघनाथ बचा है। रावण ने मेघनाथ को किसी पहाड़ी में दिग्विजय यज्ञ करने के लिए भेज दिया है। वो यज्ञ अगर पूर्ण हो जाता है तो रावण को कोई हरा नहीं सकेगा। विभीषण ने राम को बता दिया कि ऐसे गया है मेघनाथ, अगर उसका यज्ञ बीच में भंग कर दिया जाए तो खेल खत्म। तो भेज दी वानर सेना। अब वानर तो वानर, कूद फांद करने लगे, पानी डाल दिया, यज्ञ भंग हो गया। मेघनाथ क्रोध में उठ खड़ा हुआ, धनुष बाण संभाल लिया, लक्ष्मण सामने, पहला अस्त्र छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, आजकल का एटम बम है वो। लेकिन तुरंत उसने क्या देखा कि लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल आभा मंडल घूम रहा है, देखा होगा आपने, और ब्रह्मास्त्र से नमन करके वापिस चला गया। एक ही बार यूज होता था, गया, हेलो, मेघनाथ देखता ही रह गया। दूसरी बार उसने छोड़ दिया नारायण अस्त्र, वो भी उस आभा मंडल का तीन बार चक्र लगाकर लोप हो गया। तीसरी बार उसने छोड़ दिया महादेव का दिया हुआ पाशुपात अस्त्र, वो उससे टकराया और गिर के समाप्त हो गया। मेघनाथ ने तो रावण को जाकर कहा था हम इन्हें जीत नहीं सकेंगे, संधि कर लो, ये तो देव आत्माएं आई हैं, कोई ये हमारे चारों ओर बनाना है हमें, तो माया की कोई शक्ति, बॉम्ब्स की कोई शक्ति आपको टच नहीं करेगी, कलयुग का कोई प्रभाव इस आभा मंडल के बीच में नहीं आएगा। कैसे बनाएंगे? एक बार सवेरे बना लो, एक बार शाम को। क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आता था, क्लियर हुआ हाथ उठाओ, क्लियर हुआ? सवेरे और शाम किसी भी टाइम, इसमें अमृत वेले की बात नहीं है, किसी भी टाइम 7 बार संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी, पहली बार से ही फैलने लगी, 7 बार कर लें, 5 बार कर लें, और मेरे चारों ओर बन गया शक्तिशाली लाल रंग का आभा मंडल, मैं उसके बीच में बैठा हूं, बैठी हूं। थोड़ी देर बैठ जाना, चाहे आंख बंद कर लेना, नो प्रॉब्लम, आभा मंडल के बीच में आप बहुत शक्तिशाली होंगे, सुरक्षित होंगे। दूसरी बात, पवित्रता का आभा मंडल बनाना है, 5 बार ऐसे याद करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता की देवी हूं, मेरे अंग अंग से गोल्डन किरणें फैलने लगी और बन गया एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल चारों ओर। इसके बीच में बैठ जाएं, थोड़ी थोड़ी देर, 1-2 मिनट का काम है ये, बहुत सुख मिलेगा आपको। आप अपने घरों को भी इस आभा मंडल में बांध सकते हो, पूरे घर को, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, किरणें फैल गई दूर दूर और घर के चारों ओर, ये लक्ष्मण रेखा खींच गई, पावरफुल आभा मंडल में, आभा में आ गया आपका घर। इसे कोई चोर भी नहीं आएगा, भूत प्रेत भी नहीं आएंगे, कलयुग का कोई बुरा प्रभाव भी नहीं आएगा। चलो अब योग के बाद क्वेश्चन आंसर।